नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। आर्थिक कार्य विभाग ने केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई घोषणा पर अमल के लिए 3 वर्षीय सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना पाइपलाइन तैयार की है। इसमें बुनियादी ढांचे से जुड़े केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 852 परियोजनाएं शामिल हैं। इनकी कुल लागत 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। मंत्रालय ने कहा है कि पाइपलाइन में सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली संभावित परियोजनाओं की शुरुआती जानकारी दी जाती है। इससे निवेशकों, विकासकर्ताओं और अन्य पक्षों के लिए बेहतर योजना और निवेश का निर्णय लेना आसान होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से 2 सप्ताह के भीतर उन सभी स्रोतों का पहचान करने को कहा है जो प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची ने कहा कि आयोग सभी विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर दीर्घकालिक समाधान सुझाए जिसे चरणबद्ध रूप से लागू किया जा सके। एक रिपोर्ट।
न्यायालय ने कहा कि ये सुझाव ऐसे होने चाहिए जिससे लोगों की आजीविका, उद्योग और जनता पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय इसीलिए विफल रहे कि न्यायालय ने कई विशेषज्ञों के विचार लिए जो अलग अलग प्रकार के थे। पीठ ने रिपोर्ट देने के लिए 2 महीने का समय दिए जाने के संबंध में अपर सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के अनुरोध पर तीखी प्रतिक्रिया दी। हालांकि न्यायालय ने आयोग को 2 सप्ताह का समय देते हुए इस महीने की 21 तारीख तक कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर आयोग की स्थिति रिपोर्ट मौन है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड MARB ने न्यूनतम मानकों का अनुपालन न करने पर जम्मू कश्मीर के रियासी स्थित श्री माता वैष्णो देवी चिकित्सा उत्कृष्टता संस्थान की अनुमति रद्द कर दी है। वर्ष 2025-26 के लिए कॉलेज में प्रवेश पाने वाले सभी विद्यार्थियों को जम्मू कश्मीर के एक अन्य चिकित्सा संस्थानों में समायोजित किया जाएगा। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। संस्थान को वर्ष 2025-26 के लिए 50 MBBS सीटों पर दाखिले की अनुमति दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में तटरक्षक बल के पोत समुद्र प्रताप को बेड़े में शामिल किए जाने की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये पोत आत्मनिर्भर भारत की भावना के दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्र प्रताप पोत राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त करता है और सरकार की सतत विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नीति आयोग ने चालू वित्त वर्ष की कारोबार संबंधी तिमाही रिपोर्ट ट्रेड वॉच का 5वां संस्करण जारी कर दिया है। इसमें भारत के व्यापारिक परिदृश्य में हो रहे बदलावों को प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब निर्यात में तकनीक की भूमिका बढ़ रही है, सेवा क्षेत्र में विस्तार जारी है और आयात का समीकरण भी बदला है, जिससे पता चलता है कि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से अधिक गहराई से जुड़ रहा है। अब केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित 170 से अधिक स्मारकों और संग्रहालयों के लिए ऑनलाइन टिकट खरीदी जा सकेगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसके लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की शुरुआत की है। ऑनलाइन टिकट में भी भारतीय के लिए 5 रुपए और विदेशी नागरिकों के लिए 50 रुपए की मौजूदा छूट जारी रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि इंडियन सुपर लीग मुकाबले 14 फरवरी से शुरू होंगे। प्रतियोगिता में 14 टीम हिस्सा ले रही है। इनमें मोहन बागान और ईस्ट बंगाल की टीम भी शामिल है जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वित्तीय प्रारूप का विरोध कर रही थी। लीग में कुल 91 मैच खेले जाएंगे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।